ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि को। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरे नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। ओम नमो शिवाय। तो आज के सत्संग में फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और हम लोगों को जो पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर 18 अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको द कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन भी बोलते हैं। तो भगवान की कृपा से हम आज चैप्टर 18 स्टार्ट करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का। तो भगवान की कृपा से हमारे 17 अध्याय बहुत ही ब्यूटीफुली कंप्लीट हुए हैं। तो आखिरी अध्याय है ये, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही मेरी, मतलब आप बोल सकते हो कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी रही है, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने नई सीखी, मतलब मुझे ये लगा ही नहीं कि ये भगवत गीता मैंने पहले पढ़ी हुई है। बिल्कुल डिफरेंटली मैंने हर एक श्लोक को डिफरेंट एक्सपीरियंस किया है, है ना, इस जर्नी को डिफरेंट एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारी चीजें मैंने अडॉप्ट किया, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं अनगिनत, और आशा करती हूँ कि आप सबने भी बहुत एंजॉय किया होगा और इसको अपने जीवन में उतारा होगा तो ज्यादा एंजॉय आया होगा, है ना। तो भगवान कृष्णा के लिए हमारे ये ब्यूटीफुल सेवा है कि उनके संदेश को, भगवान का ये जो दिव्य संदेश है जिसमें भगवद गीता के बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने जो मंत्र हमें दिए हैं ना, जीवन जीने के मंत्र मैं इनको कहती हूँ, क्योंकि होते हैं ना एक तो मंत्र होते हैं कि जिनको हम चैंट करते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड्स है ना वो मंत्र है। भगवत गीता दिव्य ज्ञान है। ये हमारी भगवान कृष्णा के लिए सेवा थी जो हमें सबको मिलजुल के एक दूसरे तक पहुंचाना है इस दिव्य ज्ञान को, कि जो आनंद को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस शांति को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब जन जन तक ये ज्ञान जाए। तो आज हम भगवद गीता का 18वां अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्णा अब हमें कंक्लूजन दे रहे हैं। एक्चुअली 17 चैप्टर में होगी ये भगवद गीता पूरा कंप्लीट, लेकिन अब इसमें जैसे एक प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन के एंड में बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं ना, जिसमें हमारा एक रिकैप हो जाए, रिवीजन हो जाता है। तो भगवद गीता की समरी है ये, मतलब भगवान श्री कृष्णा अब हमें इसमें कंक्लूजन दे रहे हैं। तो देखते हैं अब भगवान कृष्णा हमें क्या समझा रहे हैं। हाँ जी ममता जी पढ़ लो आप। हरि बोल।
हरी हरि बोल। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि संक्षेप। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कार्य पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। ये ब्रह्म अनुभूति भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह परम चरम निष्कर्ष ये है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य भाग को वापस जाने में समर्थ बनाती है। श्लोक नंबर 2। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। श्लोक नंबर 2। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी। देखो फ्रेंड्स ये सेकंड वर्स पढ़ा है ममता जी ने, है ना। तो फर्स्ट वर्स में जो पहला वर्स था इस चैप्टर का, उसमें अर्जुन ने कहा था कि मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ, है ना। तो जो ये क्वेश्चन था अर्जुन जी का, तो अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि जो पंडित जन है ना, वो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले भगवान ने संन्यास के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, कि भगवान हमें क्लियरली बता रहे हैं कि घर छोड़ना संन्यास नहीं है। जब आप अपने जीवन में भौतिक इच्छाओं का त्याग करते हो, अपने मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, है ना, अपनी फैमिली लाइफ को जीते हुए जो अपनी मटेरियल डिजायर्स हैं उसका जो त्याग करते हो ना, देखो मटेरियल डिजायर स्पेसिफिकली बोला गया है ना, भौतिक इच्छाओं का त्याग है ना, तो आप जब भौतिक इच्छाओं का त्याग करते हो तो वो जीवन संन्यास है ना? जब आप मटेरियल डिजायर्स के बेस पर जो आप काम करते हो तो जब आप वो काम छोड़ देते हो तब आप सन्यासी बन जाते हो। मतलब भगवान ने यहाँ पे दो डेफिनेशंस करवाई है हमें, एक सन्यास और एक त्याग। जब हम मटेरियल इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करते, जब कोई इंसान कर्म कर रहा है भगवान की सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए, सबके हित के लिए निस्वार्थ भाव से, तो वैसा जीवन सन्यास है। फ्रेंड्स देखो, सन्यास को ना बाहरी रूप से नहीं देखना है हमें, है ना, कि किसने किस रंग के कपड़े पहने हैं या कोई जंगल में रह रहा है, है ना। आप घर में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हो, आप अपने कर्म करते हो घर पर, फैमिली लाइफ में, कैरियर में, हर एक कर्म निस्वार्थ भाव से, समाज कल्याण के भाव से, भगवान की सेवा के भाव से समझकर करो। और त्याग क्या है? त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना या घर परिवार को छोड़ना नहीं है। त्याग मतलब जो हमने अपने कर्मों के रिजल्ट्स के साथ अटैचमेंट बना ली होती है ना, कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, तो जब हम ऐसी भावनाओं का त्याग करके सारे शुद्ध कर्म करेंगे ना, दिव्य कर्म करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, तो वो ही त्याग है। तो एक्चुअली हमें क्या बताया गया है कि हमें कर्मों के फलों को त्यागना है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जब एक्सपेक्टेशंस होती है ना हमें, तो ये समझ के चलो हमें कि फ्रस्ट्रेशंस भी लाइफ में बहुत सारी आ जाएंगी। जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी उतनी ही हाई फ्रस्ट्रेशंस होंगी। और ये जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, ये तो आपको ही पता होगा कि जितने नियर एंड डियर होंगे ना हमारे, उनसे होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस, उनसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, बाहर वालों से थोड़ी हम करते हैं एक्सपेक्ट। इसलिए उनसे ही हमारी जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, फिर हमें फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। जो भी व्यक्ति जितना हृदय के पास होगा, जितना नियर एंड डियर होगा, उतनी ही हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस होंगी, फिर उतनी ही हमें फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि हृदय में किसको रखना है? हृदय में सिर्फ और सिर्फ भगवान को रखना है। और कर्म फलों का प्रत्याग मतलब समस्त कर्मों के फल को त्याग देना है ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उनके फलों को बिल्कुल त्याग देना, इसको बुद्धिमान जन त्याग कहते हैं। अब हम अपने ABCD मॉडल को याद करें, है ना, अगर आपने नहीं देखा तो आप गोलोक एक्सप्रेस में टाइप कर सकते हो ABCD मॉडल फॉर पॉजिटिव लाइफ ऑन गोलोक एक्सप्रेस, है ना। उसमें ए स्टैंड फॉर अंदरूनी कुरुक्षेत्र, तरे फॉर अंदरूनी कुरुक्षेत्र, बी इज बेसिक फैमिली लाइफ, सी कैरियर, और डी इज डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन में जाना। तो बी और सी में नॉर्मली लोग फैमिली लाइफ में और कैरियर में इच्छाओं से रिलेटेड कर्म करते रहते हैं, है ना। फैमिली लाइफ और कैरियर से रिलेटेड ही हमारे कर्म होते हैं ना, इच्छा पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। फैमिली लाइफ में भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कैरियर लाइफ में भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना। तो अगर हम बी और सी को ड्यूटी बना लें कि मुझे भगवान की खुशी के लिए करना है, जो भी मुझे घर की ड्यूटीज मिली हैं या कैरियर की ड्यूटीज मिली हैं, तो प्रभु की कृपा है कि मुझे ये मिली है, मुझे फैमिली मिली है, मुझे कैरियर मिला है ना। आप अनाथ आश्रम में जाओ, उनको बस यार फैमिली नहीं है, खाने को खाना नहीं है, है ना, उनके भाई बहन, उनके पेरेंट्स, कुछ भी नहीं है उनके पास, है ना। और कैरियर देखो, आप रास्ते में चलते हो, कितने लोगों के पास काम नहीं है, है ना। और हमें इतनी अच्छी फैमिली मिल जाती है, कैरियर मिलता है, फिर भी हम दुखी रहते हैं, है ना। दुखी रहते हैं हम कि मेरे को काम बहुत करना पड़ रहा है यार, मुझे आज बहुत सारा काम करने पड़ गया घर का, या मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम था आज, है ना। और अगर हम मान लो ऑफिस में कोई हाई पोजीशन पे चले जाएं, तो क्या पैसे बढ़ने के साथ साथ काम कम हो जाता है कि काम बढ़ जाता है? काम बढ़ जाता है, है ना। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि जो भी हमें ड्यूटीज मिली है, चाहे वो फैमिली लाइफ की है, जो वो कैरियर की है, तो मुझे सारे कर्म भगवान की खुशी के लिए करने हैं। फिर क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, ये प्रभु की इच्छा है, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है ना। तो इस भाव से चलेंगे तो बी और सी में त्याग आ गया, बेसिक फैमिली लाइफ में और कैरियर में त्याग आ गया, कि हमने फलों की एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी, कि ठीक है मेरे को अपना बेस्ट करना है। भगवान ने क्या कहा भगवद्गीता में? अपना बेस्ट करो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, बस सिंपल, है ना। और जो नॉर्मली वर्ल्डली लोग हैं वो बी और सी में डिजायर्स करते रहते हैं, डिजायर्स करते रहेंगे अपने नियर एंड डियर लोगों से, अपने ऑफिस में, है ना, फिर नहीं होता तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है, फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का जीवन जो जीते हैं, जो डिवोशन का जीवन जीते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपल अपना भाव बदल देंगे, वो बी और सी में भक्ति भाव ले आएंगे कि मुझे यार भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मुझे इसको बेस्ट वे में करना है, सिंपल बात, बस मुझे इतना करना है, भगवान ने इतना कहा है मुझे बस इतना करना है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। वो हम पढ़ते हैं ना हमेशा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मतलब भगवान ने कहा है ना कि फल की इच्छा मत करो, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, कुछ भी मन घड़ंत कर्म नहीं, सही दिशा में कर्म करना, भगवान ये हमें कह रहे हैं कि सही दिशा में कर्म करने हैं, कुछ भी मन घड़ंत तरीके से कर्म करना कर्म में काउंट नहीं होता। ये सारी बातें फ्रेंड्स हमें ना जीवन को बेहतर जीने के लिए समझाई जा रही हैं, और अपने परिवारों को साथ में लेकर चलने के लिए बताई जा रही है। अगर देखो भगवान ने हमें कहीं जंगल में जाने की बात बतानी होती कि जाओ जंगल में जाके भक्ति कर लो, है ना, तो भगवान ने भगवद्गीता क्यों अर्जुन को उसके सबसे बिजी टाइम में, उसके सबसे टफ टाइम में, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले सुनाई। इसका कुछ मीनिंग है ना फ्रेंड्स, भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमें कहीं छोड़ छाड़ कर जाने की जरूरत नहीं है, है ना, हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की ड्यूटीज को भगवान के निर्देशानुसार करना है, सिंपल बात, प्योरिटी से करना है पहली बात, ऑनेस्टली करना है ना, विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट, है ना, तो समाज कल्याण का गोल बना के करना है, और फिर जो हम जीवन जिएंगे ना तो वैसा जीवन संन्यास है और वैसा ही जीवन त्याग है। देखो एबीसीडी मॉडल में जो डिस्ट्रक्टिव करता है ना इंसान, अब डिस्ट्रक्टिव को थोड़ा समझ लेते हैं इसको, कि एक इंसान मान लो फेसबुक पे बैठा रहता है या व्हाट्सएप चलाता रहता है या बिना मतलब के टीवी देखता रहता है, वो किस लिए करता है, वो अपने लिए नहीं करता फ्रेंड्स, वो अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए करता रहता है टाइम पास, है ना। मान लीजिए आपका मन, आपकी इंद्रियां कहती हैं कि चलो टीवी देख लो या ये खाना खाना है मुझे, है ना, तो वो आप अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए, अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए आप वैसा काम करने शुरू हो जाते हो। तो आप ये जो काम कर रहे हो या टीवी देख रहे हो या ज्यादा खाना खाना जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सा तामसिक खाना खा रहे हैं या सात्विक खाना खा रहे हैं या राजसिक खाना खा रहे हैं, है ना, कुछ भी जो काम हम करते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो क्या अपने लिए कर रहे होते हैं एज ए सोल लेवल या इंद्रियों को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। आपका मन कह रहा है कि चलो गाड़ी खरीद लो, चलो घर खरीद लो, तो ये आप अपने लिए करते हो कि इंद्रियों की इच्छा को पूरी करने के लिए करते हो? इंद्रियों की इच्छा को पूरी करने के लिए करते हैं फ्रेंड्स हम, है ना। तो जो डिस्ट्रक्टिव जो होते हैं ना सारे काम जो हमारी इंद्रियों को खुश करते हैं, इस तरह के सारे डिस्ट्रक्टिव काम हमें त्यागने हैं, है ना। लेकिन भगवान ने अगर हमें बच्चे दिए हैं, है ना, घर दिए हैं, फैमिली दी है, तो वो इंद्रियों के सुख के लिए नहीं है फ्रेंड्स, वो ड्यूटी है, है ना। हमें समझना है कि कौन से काम हमारे ड्यूटी हैं और कौन से काम हमारे ड्यूटी नहीं है, है ना। टीवी देखना, महंगी महंगी शॉपिंग करना, है ना, या फिर फालतू के भूख नहीं है फिर भी बस मन ललचा रहा है खाते रहना, ये काम हमारे ड्यूटी नहीं है फ्रेंड्स, ये हम इंद्रियों को खुश कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं जो इंद्रियों के प्लेजर के लिए होती हैं। और जब कोई बच्चों को बड़ा करता है तो वो दो तरह से करता है, है ना। मान लो वो बच्चों को बड़ा कर रहा है तो उसके मन में क्या होगा, या तो वो डिस्ट्रक्टिव कर रहा होगा या फिर वो डिवोशनली कर रहा है। बच्चों को बड़ा करना डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है, पहले इसको समझते हैं। जब हम उसमें अपने इंद्रिय सुख के बारे में सोचे कि कल को ये बड़े होंगे तो मुझे बड़ा सम्मान देंगे, है ना, सब कहेंगे कि आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, तो इसमें इंद्रिय सुख की कामना आ गई, ये भी कामना आ गई कि सब मेरी तारीफ करें, है ना, कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे को इसको इसलिए पढ़ाना है या इसलिए बड़ी हाई फाई मैरिज करनी है कि सब जगह मेरा नाम हो। तो इसमें आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, इसमें आप इंद्रिय सुख की कामना पूरी कर रहे हो। और जब कामना आ गई डिस्ट्रक्टिव हो गया फिर बच्चे को बड़ा करना, है ना, मतलब अगर कामना आ गई, कोई डिजायर आ गई, है ना, कि मैं बच्चे को इसलिए बड़ा करूंगी कि मेरा नाम हो जाए, है ना, या फिर ये बच्चे बड़े होके मेरी सेवा करेंगे, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया बच्चे को बड़ा करना। और डिवोशन कैसे बन जाएगा कि वो सोचे कि प्रभु ने मुझे ये बच्चे दिए हैं, है ना, मेरे बच्चे नहीं है ये भगवान के बच्चे हैं, मैं उनकी मदर हूँ, है ना, और मुझे ये प्रयास करना है कि मैं उनको किस प्रकार होलिस्टिक एजुकेशन दूं, अपना बेस्ट पॉसिबल ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनका उनके साथ योगदान कर सकूं, है ना। और जो मनुष्य जीवन हमें मिला है उसका मेन पर्पस, अगर हम मदर्स हैं ना, तो हमारा एक पर्पस ये भी होना चाहिए कि जो सोल्स हमें मिली हैं उनको होलिस्टिक एजुकेशन देना फ्रेंड्स, है ना। अब हम भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हम गाइड कर सकते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते थे, हमें पता नहीं होता था कैसे गाइड करना है, तब हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर भी हैं और हम उन्हें किस प्रकार गाइड कर सकते हैं, भगवान हमें क्लियरली बता रहे हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा उन्हें भगवत गीता का ज्ञान, है ना, डे टू डे लाइफ में हमें उनको देना भी चाहिए। तो हमारा मेन पर्पज है कि जो भी मैंने सीखा है उनको भी मैं अवेयर करवाऊं, जो हमें जानते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये नहीं कि अपने आप सीख लिया बस अपनी लाइफ अच्छी होगी तो सब छोड़ देती है ना, कि अपनी लाइफ में बेस्ट हो गया, एनर्जी मिल गई आपको और बस फिर बाकियों के बारे में नहीं सोचना। अपने अपनी लाइफ तो अच्छी करनी है, है ना, पहले तो अपनी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन फिर ये भूल नहीं जाना इसका कि भगवत गीता हमें क्यों भगवान ने समझाई है। भगवान ने कहा कि भाई जो तुम्हें मिला है ना उसको बांटो अभी, है ना। तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान मिला है तो उसको बांटना भी, अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में इसको शेयर करो, है ना। आप शेयर नहीं कर सकते उसको, उनको सत्संग तक लेके आओ ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए, है ना। अपने बच्चों को अवेयर करवानी है हमें ये चीजें। जब हम मदर्स है तो हमें पता होता है, मालूम है बच्चे ने बोल दिया कि दो चपाती खानी है, उसने तीन खाते आज उसने बोल दिया दो खानी। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं, मुझे बोलता है ना कि मैंने दो खानी है, तो मैं उसको, मेरे को पता है इसने तीन खानी है लेकिन आज दो बोल रहा है, तो चलो मैं उसको क्या करती हूँ कि तीन रोटी को दो रोटी में कर देती हूँ कि थोड़ा सा मोटी बन जाती है, बड़ी बन जाती है। तो इस तरह से ही हमें जो भगवत गीता का ज्ञान मिला है ना, जरूरी नहीं उनको आपने बताना है कि ये श्लोक में ये सीखा मैंने वो सीखा, तो जैसे जैसे आपको उनके लाइफ में जो भी आप उनको सिखाना चाहते हो या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या वो उनके लो फेजेस आते हैं या हाई फेस में चले गए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो आप उनको धीरे धीरे इन बातों से अवेयर करवा सकते हो, है ना। कि जैसे सुख दुख की बात है, हम उनको समझा सकते हैं कि भाई सुख में ज्यादा सुखी नहीं हो जाना है, दुख में ज्यादा दुखी नहीं हो जाना है, है ना। कितनी सारी बातें हमें पता लग रही है कि फेलियर्स को एज ए लर्निंग्स लेना है, है ना। देखो आजकल कितने सुसाइड वगैरह हो रहे हैं बच्चों के, 10th 12th में कितने सारे होते हैं, है ना। तो हम उनको पहले से अवेयर करवा सकते हैं कि भाई फेलियर्स तो आते हैं लाइफ में, है ना, तो लाइफ रुक नहीं जाती है, चलने का नाम ही जिंदगी है ना। तो कितना कुछ हम सिखा सकते हैं यार, है ना। अभी हम सीख रहे हैं तो हम बच्चों में भी ये चीजें डेवलप कर सकते हैं, है ना। इसलिए माता पिता को गुरु भी बताया गया है ना। और माता पिता का मतलब खाली कैरियर सेट करना ही नहीं होता, है ना। गुरु वो है जो परमात्मा से जोड़े एक सोल को, है ना। एक बैलेंस तरीके से अगर आप पेरेंटिंग करोगे तो वो भी क्या होगी, वो भी तो डिवोशन है। देखो भगवत गीता में हमें जो दो टाइम भक्ति करते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट से टोटली हमें उठना है। पेरेंटिंग कैसे करनी है, है ना, हमें काम कैसे करने हैं घर के, खाना कैसे खाना है, इतनी छोटी छोटी बातें तो भगवान हमें समझा रहे हैं, है ना। और इस तरह से अगर हम अपनी लाइफ लीड करते हैं, अपनी लाइफ भी और बच्चों को भी इस तरह से संस्कार देते हैं, तो ऑटोमेटिकली है ना वो डिवोशन होगी, ऑटोमेटिकली है ना स्पिरिचुअलिटी जीवन में आगी। जब लाइफ में सोच ही लिया है करना ही बेस्ट है, है ना, चाहे वो पेरेंटिंग है, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो कैरियर है, है ना, तो डिवोशन ही होगी ना वो, कि हर टाइम आप इसी मेंटल स्टेट में रहती हूँ कि मुझे बेस्ट करना है, भी मैं कैसे बच्चों को कोई अच्छी चीज सिखा सकती हूँ। अरे और ये होता है 100% होता है। अब ये सिर्फ खाली बातें नहीं है, अगर आप सही जीवन जी रहे हो ना, जो ये वाइब्रेशंस है ना, ये चारों तरफ फैलती है, है ना। लेकिन वो वाली है भक्ति नहीं करनी है कि जो दो टाइम वाली भक्ति है उस भक्ति से हमें ऊपर उठना, तो ऐसी पेरेंटिंग करना भी संन्यास है ना। तो वैसे ही प्रोफेशनल लाइफ है, भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्म करेंगे तो दुनियादारी में हम उलझे रहेंगे हमेशा, है ना। ड्यूटी समझकर डिवोशनली हम अपने कार्य करेंगे तो हम क्या होगा, मुक्त जीवन जी पाएंगे, है ना। मतलब चिंता ही कोई नहीं है कि जो बस अपना बेस्ट करना है, और फिर उसके रिजल्ट से कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है, है ना। तो गृहस्थी में रहकर भी हम त्यागी बन सकते हैं फ्रेंड्स, सन्यासी बन सकते हैं और योगी भी बन सकते हैं, लेकिन अभी हम इस स्टेज पे नहीं है, है ना। अभी हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए योगी कैसे बनना है वो सीखना है, है ना। वही गृहस्थी होगी जो आपको भोग विलास की जगह लगती थी, वो अब आपको मंदिर दिखेगा, है ना। बहुत से लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, पहले आपको बच्चों को बड़ा करने में चिढ़ आती थी, है ना, अब आपको लगेगा कि भगवान गुरु का रोल प्ले करने के लिए सेवा ले रहे हैं मुझसे, है ना, भगवान मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ पेरेंटिंग के रोल में, कहाँ पे चूकती हूँ, कहाँ पे फिर मुझे डांट पड़ने वाली है। फिर आपने सोच लिया कि मैं बच्चों को हम अच्छे संस्कार ही दूंगी, है ना। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल मिथ है कि हम छोटे होते से बच्चों को भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते, छोटे होते ही आप बच्चों को छोटे छोटे चीजें सिखा सकते हो फ्रेंड्स, भगवान से जोड़ सकते हो ताकि बड़े होके उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, है ना, उनके लाइफ में फेलियर्स भी आए लेकिन उनको उनसे डील करना है फिर, है ना। तो बिल्कुल जिनके बच्चे छोटे हैं तो उनको तो बिल्कुल ही जो बातें यहाँ बताई जाती हैं उनको अपने जीवन में, जब वो अपने जीवन में उतारेंगे फ्रेंड्स, तभी तो आप अपने बच्चों के जीवन में उतार पाओगे ना उन संस्कारों को। संस्कार मतलब क्या, जो आपने सीखा वो फिर आप दूसरों को दे पाओगे ना, है ना। जब वो आपके एक हैबिट बन जाएंगी, है ना, वो जो चीजें डिवोशनल एक्टिविटीज हैं या जो आप घर में कैसे अपना बेस्ट देते हो, है ना, या कैरियर को कैसे बेस्ट देते हो, है ना, गुस्से पे कितना कंट्रोल है, जेलसी वाला कितना आपका एंगल है, या कंपेरिजन्स में उसमें क्या सोचते हो, है ना, जो भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जो भी नेगेटिव हम में ट्रेट्स होते हैं उनके बारे में हमारा क्या विचार है, किस तरह से हम घर में जीवन जीते हैं, तो वो बच्चे सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमें। बच्चे वो नहीं सीखेंगे जो हम बोल रहे हैं, बच्चे वो सीखेंगे जो हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो सन्यासी और त्यागी इस तरह से बनना है हमें, फल की इच्छा का त्याग करना है और भौतिक इच्छाओं पर आधारित हमें कर्म नहीं करने हैं, है ना। एकदम से बंद तो नहीं होंगे लेकिन उनको पहचान कर धीरे धीरे हमें घटाने का प्रयास करना फ्रेंड्स, है ना। और भगवान की सेवा की इच्छा करते हुए हमें हर कर्म करने हैं, तब हमारे कर्म दिव्य हो जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो।
हरि बोल। श्लोक नंबर 5। यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का हमें कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। तो भगवान श्री कृष्ण फ्रेंड्स हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से तीन प्रकार के ऐसे कर्म बताते हैं जो हमें शुद्ध करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई महात्मा भी बन जाए, मतलब कोई जितना भी महान बन जाए, जितना भी वो डिवोशन के रास्ते में आगे बढ़ जाए, कितना भी वो शुद्ध क्यों ना हो जाए, तो भी उसको ये जो कर्म है ना उसको शुद्ध करते हैं। तो ऐसे कर्मों का हमें कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे तीन कर्म कौन से हैं? यज्ञ करना, दान करना और तपस्या करना, है ना। ये सारे कर्म सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, है ना। और जो प्योरिटी होती है उसका कोई एंड नहीं है, है ना। जो ये शुद्धि की जर्नी है ना फ्रेंड्स, है ना, ये जो भगवद गीता की जर्नी है, ये क्या है? ये शुद्धि की जर्नी है ना। दो लाइनों में अगर हम इसको कहें ना, भगवद गीता में आपने क्या सीखना है, तो भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जहां पे आप हो ना अभी, उसके नेक्स्ट वर्जन में जाना। आप भगवद गीता का पहला चैप्टर देखो, उसमें अर्जुन की क्या स्टेज थी, है ना। दो रथों की तुलना में हमने सीखा था, जो पहले वाला रथ उसमें था अर्जुन, है ना। तो 18वें चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते वो कहां पहुंच गया, दूसरे रथ में उसकी एंट्री हुई है। मतलब ये शुद्धि की जर्नी है फ्रेंड्स, है ना। अपने आप को प्योर करना, अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज डेवलप करना, और जो अपनी डेमोनिक क्वालिटीज हैं उनको प्रतिशत में कम करते जाना और अपनी डिवाइन क्वालिटीज को प्रतिशत में बढ़ाते जाना। तो ये शुद्धि की जर्नी है, और शुद्धि में कोई 100% नहीं होता। ये जर्नी कभी भी खत्म नहीं होती। जहां पे अभी आप हो ना, मान लो आप 100% पे पहुंच गए, तो अगले 200%, 300%, ये सारे लेवल्स वेट करते हैं हमारा। वो मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब आप कृष्ण भक्ति में, स्पेसिफिकली कृष्ण भक्ति में आते हो ना, तो भाई भगवान एक एक करके हमारे विकारों को चुनते हैं, एक एक करके हमें बताते हैं कि भाई चलो, जब हम ज्यादा उनसे इंटीमेट हो जाते हैं, जब भगवान से, जब कृष्णा से हम ज्यादा कनेक्शन बनाएंगे, तो क्या करते हैं वो, एक एक विकार हमारा चुनते हैं। चल भाई इस पे वर्क कर, चल भाई इससे वर्क कर, ये देख कितना विकार है तुम में, इतने इतने हमें टेस्टों में डाला जाता है ना। तो वो शुद्धि का प्रोसेस है ना वो। मान लो हमें गुस्से का एक एंगल है हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, है ना, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे नहीं करना है ना। और फिर भगवान हमें ऐसे टेस्ट में डालेंगे, है ना, कि जहाँ पे हमारे गुस्से का फिर टेस्ट होता है, फिर उसमें पास हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। मतलब ये जर्नी भगवान खत्म नहीं होने देते जब तक कि हमारे विकारों को वो खत्म नहीं कर लेते ना, कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते ना कि नहीं भाई अब ये बच्चा मेरे रास्ते में आगे चलने के लिए तैयार है, तब तक वो जर्नी हमारी चलती रहती है फ्रेंड्स। तो मैंने तो ये देखा कि जब आप कृष्णा से कनेक्शन बनाओगे ना, तो मजा आता है, लेकिन उसमें वो भी बहुत है भाई, टेस्ट बहुत है, तो फिर आपको तकलीफ भी बहुत होती है। ये तो मैंने ऑब्जर्व किया, तकलीफ भी बहुत ज्यादा है, और आप एंजॉय भी करते इस जर्नी को। तो जितना जितना हम भगवान के रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे ना, उतनी हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, और वहां पहुंचने के लिए फ्रेंड्स हमें प्योरिटी के प्रोसेस को पालन करना ही पड़ता है ना। और वहां पहुंचने के बाद हम रियलाइज करेंगे कि प्योरिटी के फिर अगले लेवल्स हैं, है ना, और इन लेवल्स का कोई अंत नहीं है। तो कभी भी किसी इंडिविजुअल को, व्यक्ति को इस अहंकार में नहीं आ जाना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया है, मैं बहुत ज्यादा चैंटिंग करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा दान करती हूँ। तो इस मैं के भाव से उसको आगे बढ़ना है। ये भी भाव नहीं होना चाहिए कि मैं तो कितनी अच्छी इंसान हूँ, है ना। आप सोचो कि अब इन सब चीजें करने की मुझे जरूरत नहीं है, दान है, तप है, यज्ञ है, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो प्योरिटी या अगली स्टेज में पहुंच चुका है ना, तो आप सोचो कि मुझे तो अब ये सब चीजें करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, है ना, ये तो बिगनर्स के लिए है। तो फ्रेंड्स ये माया है। फिर अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है लेकिन वो ये सोचना शुरू कर दे कि ये तो बिगनर्स के लिए और मेरे लिए इनकी इन चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं तो बहुत शुद्ध हो गई हूँ, अब मुझे कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, है ना, मैं तो बस चैंटिंग करती हूँ और मैं तो बस बहुत अच्छा जीवन जीती हूँ और मेरे को तो कोई भी अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है, तो फ्रेंड्स ये सब माया है। फिर तो इन सब चीजों से हमें बचना है, हमें समझना है कि शुद्धि की कोई लिमिट नहीं है। हम लगातार इस पे चलते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं, है ना, और लगातार चलते हुए अपने आप को इम्प्रूव हम खुद देखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव होते हुए हम खुद देखते हैं। आप खुद सोचो जो 2 साल से 1.5 साल से रेगुलर चल रहे हैं तो वो देख रहे हैं ना अपने आप को ग्रो होते हुए, अपने आप को इम्प्रूव करते हुए देख पा रहे हो ना आप। तो अगर हम बेहतर इंसान बन भी चुके हैं तो भी फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम और अच्छा नहीं कर सकते। और हमारी जो नॉलेज है ना फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड है और बहुत अनलिमिटेड चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, है ना, वो चाहे स्पिरिचुअली हो या फिर वो मटेरियली हो, है ना। तो हमें लगातार सीखने वाले प्रोसेस में रहना है, अपने माइंड को ना ओपन रखना है। ये नहीं कि बस मैंने ये सीख लिया और बस मैंने यही करना, मैं तो ऐसी हूँ मुझे तो यही करना है, ये वर्ड में ही नहीं निकालने हैं अपने अंदर से कि मैं ऐसी हूँ और मैं इतना ही कर सकती हूँ। नहीं, मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, है ना। जब आप अपने माइंड को ओपन कर देते हो ना फिर बहुत सारी चीजें आपको आती जाएंगी जो आपके लिए जरूरी है, वो भगवान अपने आप वो चीजें डोर ओपन करते जाते हैं। लेकिन आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं सीखना, मैंने सब कुछ सीख लिया, फिर भगवान वो डोर बंद कर देते हैं कि भी हम मान लेते हैं ना, हम अपने इंस्ट्रक्शन दे देते हैं मन को, नहीं बस हो गया, बस मेरे को तो इतना सीखना, बस इससे आगे नहीं जाना, बस मेरे को जो सीखा है बस इतना ही सीखना है। तो फिर हम खुद ही अपना डोर क्लोज कर देते हैं, है ना। तो लेकिन हमें अपने डोर ओपन रखने हैं, जो भी आ रहा है किसी से भी सीखने को हमें खुले दिल से इसको स्वीकार करना है, है ना। तो यज्ञ का, दान का, तपस्या का कभी त्याग नहीं करना है। जितने भी प्योरिटी का लेवल आप आगे क्रॉस कर लो, इन तीनों चीजों का भगवान कह रहे हैं कि हमें पालन करना है, और जितना हो सके हमें ये चीजें अपने जीवन में प्रतिशत में बढ़ाते जाना चाहिए ताकि हम शुद्ध होकर भगवान की भक्ति का आनंद ले सकें और अपनी सारी ड्यूटीज को प्योरिटी से परफॉर्म करें और पॉजिटिविटी को समाज में भी फैला सकें। हमें कभी भी दान, यज्ञ, तपस्या के कर्मों को बंद नहीं करना है। मतलब फ्रेंड्स हमें सिंपल भगवान ये समझा रहे हैं, है ना, बट करने इस भाव से हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, है ना, करने वाले तो आप ही हो, है ना। ये हम नेक्स्ट श्लोक में भी थोड़ा समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। मोना जी, आज आपने बहुत ही डिटेल में एक एक वर्ड समझाया और बहुत ही अच्छी तरह से आनंद समझ आया और बहुत ही आनंद आया, क्योंकि जो अध्याय 18 है ये पूरे श्रीमद् भगवद गीता का सार है और इसको हमें बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। तो जैसे इसमें है ना संन्यास की सिद्धि, संन्यास की सिद्धि नंबर 1 संन्यास और 2 त्याग। इसमें भगवान हमें समझा रहे हैं कि हमें अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं हमारे अंदर बहुत, उनको छोड़कर कर्म करने हैं। मींस हमें डिस्ट्रक्टिव को डिवोशन बनाना है, हमें अपनी जो है ना मटेरियल डिजायर्स हैं हमारी उनको छोड़कर हमें कर्म करने हैं। भक्ति भाव से अपनी हर ड्यूटी को हमने भक्ति भाव से करना है। हमें जो हमारे अंदर संसारिक कामनाएं इच्छाएं बहुत ज्यादा हमारे अंदर होती हैं, हमें उनका त्याग करना है, क्योंकि भगवान हमें हर अपना कर्म जो है ना भगवान की खुशी के लिए करना है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ने हमें ये रोल जो है ना प्ले करने को दिया है कि हम एज ए मदर एज ए फादर हम अपने बच्चों का पालन करें अच्छी तरह से। अगर हम डिजायर्स रखेंगे ड्यूटी को करेंगे डिजायर रख के तो हम सन्यासी नहीं कहलाएंगे। और फलों की इच्छा को छोड़कर कर्म करेंगे हम कोई भी कार्य, जैसे हम अपने जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात बताई कि जब हम बच्चों की डेवलपमेंट करते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे एजुकेशन में अच्छे हों अच्छी उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो तो हम ये इच्छा करते हैं कि सब हमें कहें कि हमने बच्चों का बहुत अच्छी तरह पालन किया। वो हम मतलब अपनी प्रेस सुनने के लिए तो वो हमारा जो है ना वो कर्म हमारे जो है वो फिर त्याग नहीं कहलाएगा वो हमारे कर्म। हमें फलों की इच्छा को छोड़कर ही अपने हर कर्म को करना है। जैसे हम परमात्मा को भोग लगाते हैं तो हमें ये सोचकर हम खाना बनाते हैं कि हमने परमात्मा को भोग लगाना है तो हमें अच्छे से अच्छा खाना बनाना है कि परमात्मा खुश हो के उसको हमारे भोग को ग्रहण करें। हमें लोगों की एप्रिसिएशन को ध्यान में रखकर खाना नहीं बनाना है कि हम खाना बनाएंगे तो सच्ची बोलूं पहले जब हम खाना बनाते थे जब तक हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े थे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया था तो कोई भी चीज बनानी तो ऐसे लगता था एप्रिसिएशन मिले कि सबको पसंद आ, एक एक बच्चे से पूछना बड़ों को पूछना खाना कैसा बना तो वो एप्रिसिएशन के लिए बनाते थे ध्यान में रख के। लेकिन हमें एप्रिसिएशन का ध्यान नहीं रखना है, हमें प्रभु की प्रसन्नता के लिए खाना बनाना है। गृहस्थी में रहकर भी हम सन्यासी बन सकते हैं लेकिन हमें सन्यास को इंटरनल लेवल पर देखना है ना कि सिर्फ बाहर से देखना है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज। बहुत ही अच्छी तरह से पूरे श्लोक रिवाइज कर दिए और बिल्कुल आपने अच्छी तरह से बताया कि भाई जो हम खाना बनाते थे तो हम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बनाते थे कि सब हमारी तारीफ करें और जब फिर तारीफ नहीं होती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं या थोड़ा सा उसमें किसी ने बोल दिया कि इसमें नमक कम है या थोड़ा कोई और बात कर दी तो हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे क्या लगता था कि मतलब अपने बच्चों को कुछ भी एजुकेशन देने के लिए मैं टाइम दे रही हूँ तो मुझे क्या लगता था कि नहीं अब इसका बेस्ट ही होना चाहिए। तो लगता था कि मैं इसके साथ 5-6 घंटे लगा रही हूँ तो यार इसको बेस्ट ही देना चाहिए, नहीं तो हो ही नहीं सकता ना कि नंबर कम आए, ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया तो बिल्कुल जब से मैंने ये भगवद गीता पढ़ी है ना तो मेरे सबसे पहले बिल्कुल ये बात मेरे दिमाग में घुस गई कि नहीं भगवान ने क्या कहा कि एक्सपेक्ट तो करना ही नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम बच्चों को पढ़ा रही हो एज ए टीचर अगर तुम उसको पढ़ा रही हो है ना कोई भी चीज उसको समझा रही हो तो ये तुम्हारा ड्यूटी है ना तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हें करना है। लेकिन उसके लिए एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है कि तुम्हें ये मिल जाए या तुम चाहे उसके नंबर आ जाए लेकिन तुम एक्सपेक्ट तो कर रही हो ना कि वो आगे बढ़े या कुछ है, बस तुमने अपना बेस्ट करना है और रिजल्ट तो तुम्हारे डिपार्टमेंट है ही नहीं है, है ना रिजल्ट तो भगवान का डिपार्टमेंट है तो हम उनके डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करते हैं कि नहीं नहीं हम उनको समझा रहे होते हैं कि नहीं नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, है ना। तो हमें बिल्कुल भगवद गीता से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और हमें बिल्कुल हर चीज को लर्निंग्स की तरह लेना है और ये 18वां चैप्टर बिल्कुल हमें ध्यान से सुनना है फ्रेंड्स कि ये समरी है एक्चुअली सारे चैप्टर्स की। थैंक यू सो मच मम्मा। हरी हरी बोल। हाँ जी कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है।
हरी हरी बोल।
हाँ जी मम्मा जी।
हाँ हरी हरी बोल मोना दी और एवरीवन। आज बड़े दिनों बाद मैं सत्संग ज्वाइन कर पाई हूँ ड्यू टू माय फैमिली ऑब्लिगेशन। मैं बताना चाह भी रही हूँ कि हमारे परिवार से एक बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष नीचे गिर गया, प्रभु चरणों से जा लगाया तो उसी के कारण मैं थोड़ी अटेंड भी नहीं कर पाई, थोड़ा थे हम कि हमारे मदर इन लॉ हमारा साथ छोड़ गए थे। तो चलो एनी हाउ मैं आज का सत्संग बड़े दिनों बाद सुना, एक तो बहुत ज्यादा मिस भी कर रही थी पर घर में इतनी व्यस्तता थी कि मैं अटेंड ही नहीं कर पाई। तो आज का सत्संग सुन के जो मेरे को ना पिछले काफी दिनों से डिप्रेस्ड हो जाता है थोड़ा मन, वैसे ही माहौल बन जाता है, वैसी बातें होती रहती हैं। हालांकि ममता जी ने मेरे को बोला भी था कि माला करते रहो पर मेरे को बस मॉर्निंग में जब सब लोग सोए होते थे ना मैं तभी कर पाती थी, बस उतना ही जितना वो सब लोग सोए होते थे, नहीं तो उठते ही सार कुछ ना कुछ शुरू हो जाता था। तो आज का सत्संग मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि एक तो आज जो स्पेशल जो बात मेरे को आज पता लगी कि ABCD में बीच बीच में सुनती रहती थी कि गोलक एक्सप्रेस की ये एबीसीडी का जो मॉडल है ये व्हाट इज दिस, बट इसकी एब्रीवेशन सुनती रहती है, मेरे को पता ही नहीं था ये क्या है कि अंतरकरण की शुद्धि ए से बी से बेसिक लाइफ जैसे। तो आज पता लगा कि इसका रियल जो मीनिंग है वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही जैसे बनाया गया है। तो इसमें ये कि हम अपनी पारिवारिक और जो कैरियर संबंधी जो उसमें हम बैलेंस बना के चलें और उसको एज पर गीता के अनुसार या भागवत गीता के अनुसार जो एज पर नॉर्म्स करें ना, तो वाकई में आगे आने वाली जो जीवन है वो भी अच्छा बनता है और जो हम डिवोशन की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि हम जो डिस्ट्रक्शंस की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल कर पाते हैं तभी हम डिवोशन की तरफ बढ़ पाते हैं। और एक ये कि आज की हला मैं बहुत ज्यादा मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, पर ये कि हमें यज्ञ तप और जो तपस्या करनी है ना वो बिना किसी अहम के, बिना किसी अंदर मैं की भावना से करनी है। तभी हम जब शांत रहते हैं ना, तभी अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ जुड़ते जाते हैं ना, तभी हम इंटरनली शांत होते हैं, तभी हम इन चीज की अहम की जो भावना है ना उसको छोड़ पाते हैं। अदरवाइज तो क्या है, वही जो दुनियादारी में होता है कि यार ऐसा हुआ तो ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने किया, भगवान की जो इम्पोर्टेंस है उसी को समझ ही नहीं पाते। तो चलो श्री हरि की कृपा से ये सत्संग के साथ में जुड़कर ये सब बातें धीरे धीरे सीख रही हूँ और अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और कृपा बनी रहे प्रभु की और हम इस तरफ बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। हरी हरी बोल मुनादी, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज कुमार जी, हम भी आपको मिस करते रहते हैं, जब भी आप नहीं बोलते हो आपका रिव्यू हम हमेशा मिस करते हैं और बिल्कुल हम आपके मदर इन लॉ के लिए भी बिल्कुल प्रेयर्स करेंगे कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और आपने कहा ना एबीसीडी मॉडल फॉर पॉजिटिव लाइफ, तो ये मैं वीडियो आपको मतलब ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप सब लोग देख सकते हो इसको दोबारा से, है ना। तो अच्छा है, ये हमारे कर्म क्षेत्र को मतलब चार भागों में बांटा गया एबीसीडी, है ना। तो आप इसको सुनना तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बड़ी बात, मैं भी ये बात तो शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि ठीक है बच्चे हो गए, और हमें वाकई हमें क्या लगता है, धीरे धीरे ऐसे लगने लग जाता है यार जो भी काम कर रहे हैं यार बहुत प्रेशर लगने लग जाता है कि घर का काम करना है, बच्चों को संभालना है ना। तो मेरे को लगता है हाउस वाइफ के साथ होता होगा या पता नहीं जो जॉब करते हैं उनके साथ होता होगा कि नहीं, तो एक थोड़ा सा प्रेशर होने लग जाता है कि करना पड़ रहा है, ऐसा फीलिंग आने शुरू हो जाती है कि बच्चों के लिए करना पड़ रहा है, घर का खाना बनाना पड़ रहा है। तो इन चीजों को हम समझ नहीं पाते कि वाकई देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भगवान ने हमें दो बच्चे अगर दिए हैं, हमें सोल्स दो दिए हैं, तो उसको कैसे उसको हमें संस्कार देने हैं, इतना होना चाहिए कि वो बच्चे हमसे आगे निकले, है ना। मैं जो समझ पा रही हूँ कि भाई तो वो कैसे कर पाएंगे, वो तभी कर पाएंगे पहले हम अपने चेतना स्तर को ऊपर पहुंचाएंगे, पहले हम अपने आप में अच्छी क्वालिटीज लेके आएंगे, है ना। जब हमें बदलता हुआ देखेंगे ना वो फ्रेंड्स, अगर बहुत यंग एज में आपने ये सब चीजें सुन ली, भगवद गीता सुन ली, तो कितना जल्दी आप इन चीजों को सीख पाओगे और बच्चे आपको देखते देखते ग्रो कर पाएंगे, है ना। लेकिन अब मुझे लगता है ठीक है टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम है भगवान ने शायद यही वाला टाइम मेरे लिए चूज किया हुआ था, या भगवान ने किया या मैंने किया, लेकिन अब भी टाइम इतना नहीं बीता है, तो हमें अभी भी जो भी भगवान कह रहे हैं हमें बेस्ट पॉसिबल वे में वो चीजें करनी है, है ना, ताकि हम बच्चों को भी ये संस्कार दे पाए, है ना। और ये हमारी ड्यूटी है ना, बिल्कुल ये हमारी ड्यूटी है, पहले बच्चे घर से सीखते हैं, है ना। तो ये क्वालिटी पहले हम में होंगी तभी हम सिखा पाएंगे अगले बच्चों को भी, है ना। तो ये हमें ध्यान से समझना है और ये चीजें हमें अपने बच्चों में भी कल्टीवेट करनी है। थैंक यू सो मच कुमार जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल मोना दी, हरी हरी बोल एवरीवन।
हाँ जी, हाँ जी कोमल जी,
आज के श्लोक से जो मेरी लर्निंग बनी है वो ये है, चीजों का त्याग करना ही संन्यास नहीं है, बल्कि गलत कर्मों का त्याग करना ही असली संन्यास है। हमें भगवान जी को खुश करने वाले कर्म करने हैं, ना कि अपनी इंद्रियों को खुश करने वाले कर्म करने हैं। और हमें अपनी फैमिली और सोशल ड्यूटीज को निभाना है विदाउट एक्सपेक्टेशन। हमें कोई भी फल की इच्छा नहीं रखनी है, हमें अपने कर्मों को भगवान की ड्यूटी समझ के करना है। और सेकंड श्लोक से मेरी ये लर्निंग बनी है कि शुद्धि का कोई एंड नहीं है. जैसे जैसे हम डिवोशन के रास्ते, सबसे पहले तो शुद्धि का कोई एंड नहीं है. हम कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट शुद्ध नहीं हो पाएंगे. जैसे जैसे हम डिवोशन के रास्ते में आगे चलते जाएंगे, हमारी शुद्धि का ग्राफ वैसे वैसे बढ़ता जाएगा. और हमें ऐसे ग्राफ तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें कभी भी प्राउड नहीं फील करना है. हमें अपने अंदर कभी अभिमान नहीं लाना है. तो बिकॉज हम मटेरियल वर्ल्ड में इतना इंडल्ज होते हैं, जाने अनजाने में ज्ञान होते हुए भी कभी ना कभी हम कोई गलत काम या गलत कर्म हमसे हो ही जाता है ना चाहते हुए भी. तो इसलिए हमें कभी ये फीलिंग नहीं लानी कि आई एम द बेस्ट, कि मुझे इतना ज्ञान है, या मैं भागवत गीता अभी पढ़ रही हूँ, या मेरे को सारा ज्ञान है, मैं चैंटिंग कर रही हूँ जैसे कि आपने बताया. तो हमें हमेशा विनीत भाव से भगवान की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, और हमेशा भगवान जी से यही प्रे करना है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी शुद्धि करो, मुझे सद्बुद्धि दो, और मेरे से कोई भी अनजाने मतलब मैं कोई भी मेरे से गलत कर्म ना हो जाए, तो आप मेरा ध्यान रखो और मुझ पे अपनी कृपा करो. इसी भाव से हमें भगवान जी की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करना है और डिवोशन के रास्ते में आगे बढ़ते रहना है और अपनी जो ड्यूटीज है उनको निभाते रहना है. हरी हरी बोल.
हरी हरी बोल. हरी हरी बोल. ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज कोमल जी. ब्यूटीफुली आपने भी दोनों श्लोक अच्छे से रिवाइज कर दिए. और बिल्कुल भगवान ने देखो कहीं भी ना भगवत गीता में हमें कहीं भी ये नहीं कहा है कि चीजों को छोड़ दो, है ना. देखो अगर चीजें हमें मिली हैं, है ना, या किसी को भी मिली है, तो वो भगवान की ब्लेसिंग्स है ना उस पे. अगर उसको चीजें मिली है तो भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि हमें चीजों को छोड़ दो और चले जाओ तुम जंगलों में भक्ति करने, है ना. लेकिन चीजों से इस तरह से नहीं अटैचमेंट बना लेनी है कि हम बाकी चीजें बिल्कुल ही भूल जाएं, भगवान को डस्टबिन में डाल दे, समाज कल्याण को डस्टबिन में डाल दे. मतलब चीजें इसलिए दी हैं कि हम उसका यूटिलाइज कर सके, दूसरों को भी इसमें भागीदार बनाए, समाज कल्याण में उसका योगदान कर सके, है ना. मतलब इतनी एक्सेसिव अटैचमेंट कि फिर उन चीजों के आगे किसी को कुछ नहीं समझना, है ना, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना और उसी में खो जाना, उसको गलत ठहरा गया. लेकिन अगर चीजें किसी को मिली हैं तो उसका भोग करने के लिए भगवान ने कहीं भी मना नहीं किया है, है ना. भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझे बुद्धि में रखकर तुम सारे कर्म करो अपने, चीजों को भी अगर मैंने तुम्हें दी है चीजें तो उसको भी उपयोग करो, लेकिन समाज कल्याण भी करो साथ साथ में, अच्छे काम भी करते जाओ. तो क्यों नहीं भगवान खुश होते हैं हमारी चीजों से, है ना, क्योंकि भगवान ने तो हमें चीजें दी हैं, है ना, तो भगवान बिल्कुल खुश होते हैं. तो हमें चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत है फ्रेंड्स, है ना. थैंक यू सो मच कोमल जी. तो ठीक है फिर हम भजन की तरफ बढ़ते हैं. हरी बोल.
हरी हरी बोल. वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी. वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी. हम तुम्हारे पराए नहीं है, बगैर के दर पे आए नहीं है. वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी. हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी. वृंदावन के ओ बांके बिहारी, नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोधा की आँखों के तारे. नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोधा की आँखों के तारे. राधा के सांवरे गिरधारी, राधा के सांवरे गिरधारी. हमसे पर्दा करो ना मुरारी. वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी. बंद कमरों में लुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में लुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। तुम हो जो है तो हम हैं व्यापारी, तुम हो जो हर तो हम हैं व्यापारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांकी बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांकी बिहारी। हरी हरी बोल।